जमिश्रुपात परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तरश्लोक श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन बोधये स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सर्वगुणान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीविशाखान्वितां च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान के माया शक्ति उसके लक्षण और क्या है वो, और कैसे उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ भगवान को शरण जाने से ही एक व्यक्ति माया शक्ति के प्रभाव को पार करके जा सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे बौद्धिक जगत में लोग प्रकृति के नियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके कारण और ज़्यादा वो लोग प्रकृति के नियमों में बंधते जा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो भौतिक जगत के समस्याओं के लिए हल क्या है, सिर्फ हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, तभी हम लोग भौतिक प्रकृति के जो जटिलताएं हैं उससे हम लोग मुक्त हो सकते। और आगे अभी इस श्लोक से 15वें श्लोक से भगवान, क्योंकि 14वें श्लोक में उन्होंने बताया कि जो मेरे शरण में आएंगे वो लोग माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अभी भगवान कौन उनके शरण में नहीं आते हैं, कौन आते हैं, और कोई कोई लोग शरण ग्रहण करते हैं लेकिन भगवान का नहीं, अन्यों का शरण ग्रहण करते हैं, देवी देवताओं का शरण ग्रहण करते हैं, उनके बारे में भगवान यहाँ पर आगे वर्णन करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 15। नमाम दुष्कृति नो मोडा प्रपद्यन्ते नरा दमः मायापहरत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, बहुत अच्छा है ना, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग यहाँ उनके तात्पर्य को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा तात्पर्य यहाँ पर उसको दिया। तो ये एक ऐसा श्लोक है जिसको उन श्लोकों में एक श्लोक है जिसको बहुत लंबा तात्पर्य श्री प्रभुपाद देते हैं। कई जगह ऐसे लंबे लंबे तात्पर्य है भगवद्गीता में, लेकिन एक ही श्लोक को एक ही श्लोक की दृष्टिकोण से लेंगे तो शायद इसको ही सबसे ज्यादा उन्होंने तात्पर्य दिया इस श्लोक को पूरा भगवद्गीता में। बहुत सारे श्लोकों को मिला के लंबा तात्पर्य देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक ही श्लोक लेंगे तो शायद यही श्लोक को ज़्यादा लंबा तात्पर्य दिया है। ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। लंबा लंबा तात्पर्य है, जैसे उसको है इस ये शायद इस ये बहुत उससे भी बड़ा है होता है। एनीवे ये महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये श्लोक को विशेष करके समझेंगे तो तात्पर्य के साथ हमारे कृष्ण भावनामृत में जो श्रद्धा है बढ़ जाता है। कभी कभी इसका अर्थ क्या है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, और कभी कभी बहुत सारे प्रभावी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे उनका डिग्री है, ऐसे कई चीज़ है, बहुत बुद्धिमान है, तथाकथित बुद्धिमान है, बड़ा बड़ा दार्शनिक है, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है। आजकल विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव भी इतना बढ़ गया है, तो ये सब देखकर हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, तो है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन होता ही है। तो लेकिन ये श्लोक को आप समझेंगे इस तात्पर्य के साथ कि हमें समझ में आ जाएगा कि कृष्ण भावनामृत ही सही मार्ग है, तो हमारा श्रद्धा है वो बढ़ जाएगा इस श्लोक से। तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले के श्लोक को चर्चा कर रहे थे। भगवान उसमें क्या बोलते हैं, जो मेरे शरण में आते हैं माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वहां पर एक शब्द आता है प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। ये वह शब्द क्या बोलता है, बहुत ही जोर से बोलता है कि सिर्फ भगवान को ही शरण में जाना चाहिए, अन्य किसी को नहीं शरण। अन्य किसी को शरण में जाएंगे तो माया के प्रभाव से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए हम तात्पर्य के अंत में देखा प्रभुपाद जी ने वो शिव जी का भी उल्लेख करते, शिव जी भी बताते पार्वती देव सिर्फ भगवान विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते। या श्वेत शर उपनिषद में भी ऐसे तमेव विद्वान, तो वो मृत्यु से पराय हो सकते हैं जो भगवान को जानते हैं। इस श्लोक में भी प्रपद्यन्ते शब्द आता है ना, प्रपद्यन्ते नमाम दुष्कृति नो गोड़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। यहाँ पर प्रपद्यन्ते शब्द क्या है, नेगेटिव रूप से जो लोग शरण में नहीं आते उनके बारे में वो उपयोग किया, लेकिन बात तो है शरण भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो इस तात्पर्य के आरंभ में श्रील प्रभुपाद एक चीज बताते हैं, क्यों हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक में कि जो भगवान के शरण में जाते हैं वो आसानी से इन जटिल प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के जो नियम हैं जिसके द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं, जिसके द्वारा हम लोगों को बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ता है, उनसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अन्य कोई मार्ग में हम चर्चा कर रहे थे, एक उदाहरण दिया ना हम लोग, बहुत गर्मी है ये प्रकृति के कारण, भौतिक प्रकृति के कारण है, प्रभाव है, एक क्लेश है, ये क्या है, आदि दैविक क्लेश है, देवों के द्वारा, दुर्गा देवी के द्वारा अंत में, क्योंकि भौतिक प्रकृति वही है। सो ये क्लेश है, इससे मुक्त होने के लिए भगवान के शरण में जाने की बजाय या जो भगवान ने व्यवस्था दिया है उसको अपनाने के बजाय हम लोग क्या सोचा, हम बुद्धि उपयोग किया, उपयोग करके ये एसी बना दिया, लेकिन क्या हो गए, उसके प्रकृति के सामने हम लोग मूर्ख बन गए। क्यों? ऐसे प्रकृति के जटिल नियमों को हम लोग पार नहीं कर सकते हैं कोई अपने बुद्धि के द्वारा, सिर्फ भगवान के शरण में जाने से हम लोग उसको पार कर सकते हैं, है ना। आजकल बड़े बड़े शहरों में ये बहुत बड़ा समस्या है कि लोग इतना एसी यूज करते हैं, इसके कारण उष्णता और बढ़ जाता है। तो और ऐसे बहुत सारे कष्ट, उसको हीट वेव्स कहते हैं, हीट वेव्स आ जाता है, इसके कारण लोग भी मर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसके कारण, वो सहन नहीं हो जाता है, उतना गर्मी वो सहन नहीं हो जाता है, बहुत सारा मृत्यु हर साल ऐसे होता है, जैसे दिल्ली वगैरह शहरों में। तो हम लोग सोचते हैं कि बुद्धि, हमारे बुद्धि उपयोग करके ऐसे प्रकृति के नियमों से हम लोग मुक्त हो सकेंगे, लेकिन प्रकृति हमें ऐसे नहीं छोड़ती है, वो हमसे भी शक्तिशाली, क्योंकि वो भगवान की माया है, हमारा शक्ति नहीं है वो कि हमारा अधीन काम करेगा, वो भगवान का शक्ति है, मम माया दुरत्यया, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो जो भगवान के शरण में जाते हैं तो आसानी से वो लोग क्या हो जाएंगे, ये माया शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो वो इतना आसान है तो क्यों ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक लोग, वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, वो लोग भगवान के शरण में नहीं आते? ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर एक मुद्दा उठा रहे हैं। भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोजी करते हैं। जैसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजना आरंभ कर दिया उन्होंने, 5 वर्ष, 5 ईयर, व्हाट इज दैट, 5 ईयर प्लान्स, समथिंग लाइक 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ कर दिए। हाल ही में हमारा वो अध्यक्ष थे ना, कौन हो, एपीजे अब्दुल कलाम थे, अभी नहीं हो, अभी कोई माता है ना, प्रणब मुखर्जी, वो दिल्ली के गवर्नर है माता। तो उन्होंने भी इंडिया 2020 ऐसे कुछ ग्रंथ लिखा उसने, भारत 2020 में भारत कैसे होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत तकनीकी से बहुत प्रगति होगा, आर्थिक विकास होगा, होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे उन्होंने सुझाव दिया, ये सब लिखा उन्होंने। ये लोग मूर्ख लोग समझता नहीं है। प्रभुपाद जी वो हम उसको उल्लेख कर रहे थे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक 8वें श्लोक को उल्लेख कर, इस संसार में, इस जगत में बहुत सारे ऐसे तकनीकी और आर्थिक विकास किए हुए बहुत सारे ऐसे देश है, फिर भी वो इन समस्याओं को हल नहीं किया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अमेरिका के लोग भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है ना, उनको भी, वो लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं ना, वो लोग भी मानसिक रोगों से पीड़ित है ना। ऐसे कहा जाता है अमेरिका में कि 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, ऐसे इसका अर्थ है 1 मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए अपने मन को ठीक करने के। और ये लोग मूर्ख लोग, हमारे भारत के मूर्ख लोग ये समझ योजना बनाते हैं, बड़े बड़े नेता ये समझते नहीं है कि हमारा भी स्थिति ऐसे ही होगा, हो रहा है, इतना बर्बाद किया है ना तो प्रकृति को। तो ये लोग बड़े बड़े क्यों भगवान के शरण में नहीं आते, ऐसे प्रश्न उठता है, है ना। प्रभुपाद इसको विस्तार से कह रहे हैं, विभिन्न इदियों विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वे मुक्ति भगवान चरण कमलों के शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो पाता है तो बुद्धिमान तथा समशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते है ना। प्रभुपाद फिर वह कहते हैं कि वास्तव में देखेंगे तो ये सभी जो दार्शनिक विज्ञानी शिक्षक प्रशासक आदि जो है वो वास्तविक विज्ञानी दार्शनिक या शिक्षक प्रशासक नहीं है। वो वास्तविक विज्ञानी प्रशासक कौन है वो लोग? वो महाजन जो है ब्रह्मा शिवा कपिल कुमार मनु व्यास देवल असित जनक प्रहलाद बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक राजनीतिक शिक्षक विज्ञानी आदि है जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरण कमलों में शरण लेते हैं। ये लोग वास्तविक नहीं है इसलिए भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए तो किसी न किसी व्यक्ति को अनुगमन करना ही है ना? भगवान ने भी उसको बताया ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ स्तः देव। तो इसलिए हमें किन को पालन करना है? मिस्टर डार्विन को पालन करना है या श्रील प्रभुपाद जी को पालन करना है? हमारे बीच क्या है, चुनना है हमें। तो अभी उनको पालन करने से नतीजा क्या हुआ है आप समझ लीजिए, आपका अनुभव है ना, दुनिया में क्या अनुभव हो रहा है। तो इसलिए अच्छा है कि ऐसे महान जो वास्तविक राजनीतिज्ञ है, दार्शनिक है, शिक्षक है, विज्ञानी है, उनको पालन करें, महाजनों का पालन करें, परंपरा के आचार्यों का पालन करें। तो क्यों, इसका उत्तर क्या है, क्यों ये लोग शरण में नहीं आते? वो वास्तविक नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो बड़े बड़े। और ये श्लोक भी उसका उत्तर देते हैं। वो क्या है वो लोग? दुष्कृति है वो लोग। कृति मतलब क्या है? एक ऐसा श्लाघनीय कार्य करना, श्लाघनीय ना हिंदी में क्या बोलते हैं, वेरी मेरिटोरियस मीन्स श्लाघनीय कार्य, इट इज अपोजिट, इट इज, यू डोंट नो हिंदी, इट्स नॉट देयर। तो यहां पर वो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धिमान ना से, क्योंकि पुण्य पुण्यात्मा। तो ऐसे कार्य करते हैं जिसको क्या होता है, सभी लोग गुणगान करते हैं। तो योग्य कार्य करना ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। कृति मतलब योग्य कार्य करना, पुण्य कर्म करना, ये पुण्यात्मा होते हैं ऐसा है या
सिस्टम में। मेरिटोरियस वर्क, मेरिटोरियस डजंट मीन इट इज पुण्य हो सकता है, मेरिटोरियस मीन्स एक जो बहुत सारे लोग गुणगान करते हैं, बहुत यू नो ऐसे कार्य करना, विशेष कार्य करना, उसको कृति कहते हैं। तो भौतिक दुनिया में ये लोग विशेष कार्य किया है, ऐसे ऐसे चीजों को बनाया है, प्रकृति के नियमों को सामना करने के लिए कोशिश किया है वो लोग, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है वो गलत है। वो भगवान को अलग रख के वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, दुष्कृति कहते हैं उनको। तो ये नास्तिक बुद्धि है, ये भगवान को अलग रखना, हम स्वतंत्र रूप से क्या करना,
कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कोशिश करना क्या हो जाता है, उसको नास्तिक बुद्धि कहते हैं। तो इसलिए यहां पर भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ है, भगवान है, और उनके मार्गदर्शन में ये कार्य करता है। कौन सा श्लोक है वो भगवद गीता का बताइए? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद भी परिवर्तते। तो भगवान है इसके पीछे, तो इसलिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। लेकिन ये लोग इसको भगवान को नकारते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना ही कुछ बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है, तो उसका परिणाम दुष्परिणाम हो जाता है। इसलिए उनका कार्य को क्या कहते हैं, दुष्कृति कहते हैं वो लोगों को। तो प्रभुपाद अरे यहाँ पर हिरण्यकशिपु और रावण का उदाहरण, वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ऐसे बोलते बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े ऐसे प्रशासक थे वो लोग। उनका कभी क्या हो गया, खत्म हो गया अंत में, है ना। आधुनिक वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, अन्य लोगों को जाने के लिए वो लोग ऐसा यंत्र बना रहे हैं। और रावण क्या बनाना चाहता था, वो सीढ़ी बनाना चाहता था स्वर्ग लोक, दोनों एक ही है। अंतर इतना ही है कि आधुनिक जो ऐसे वैज्ञानिक दार्शनिक लोग है छोटे छोटे असुर है, और हिरण्यकश्यप और रावण बहुत बड़े असुर थे, स्वयं भगवान ने उनको खत्म कर दिया। और ये लोगों को तो भौतिक प्रकृति खत्म कर देगा, है ना। एक ऐसा वैज्ञानिक है ना आजकल, वो कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, बोलने के लिए भी नहीं आता है, फिर भी अपना मनोधर्म करना छोड़ता नहीं बकवास बोलना, बकना बकना छोड़ते नहीं, है ना, स्टीफन हॉकिंग करके। सो बोलने के लिए भी नहीं आता और चलने के लिए नहीं आता, फिर भी बकवास बोलना बंद नहीं किया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी ने कोई उसके ऊपर नियंत्रण कर रहे है। उसका स्थिति ऐसा है कि कोई उसको नियंत्रण कर रहे है उसके ऊपर, उसको स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी वो बोलता है कि भगवान नहीं है, घर बक 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 करते रहना, है ना। उसका आधुनिक अभी क्या करने वाला है, वो थियरी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ये कॉस्मोलॉजी मतलब क्या है, भूगोल शास्त्र कह सकते हैं हम लोग, अंतरिक्ष दैट इज स्पेस साइंस ना, खगोल शास्त्र या भूगोल शास्त्र ऐसे कुछ, खगोल शास्त्र ना। तो उसके बारे में कई सारे ऐसे धारणाएं हैं आधुनिक विज्ञान में, हर एक खगोल शास्त्र ने अपना ही मत को स्थापित करते हैं। तो वो कहता है कि अभी हम लोग ये सब मिला के एक ही मत बनाएंगे, धारणा बनाएंगे, उसको थेरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। तब तक वो उसको ही खत्म कर देगा भौतिक प्रकृति क्या कर देगी उसको खत्म। ये दुष्कृति लोग, इनमें चार प्रकार के लोग होते हैं। पहला है कि मूढ़, निपट मूर्ख, प्रॉपर यहाँ ग्रॉसली फुलिश। मूड कौन है, निपट मूर्ख, फूल्स एंड रैस्कल्स ऐसे कहा करते थे। तो मूर्ख, मूड और मूर्ख है वो लोग, ग्रॉसली फुलिश। तो वो उनका क्या लक्षण है, यहाँ पर दिया गया लक्षण क्या है कि इंद्र तृप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं वो, और वो इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा बोझा उठाना पड़ता है ना, है ना। तो इसलिए उनको यहाँ पर तुलना किया गया, गधे से तुलना किया गया। तो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, गधा क्या करता है, वो चर्चा कर रहे थे भौतिक सुख के बारे में, हम लोग चर्चा करते रहते कैसे आशा करते रहते हैं। तो लोग आशा करते रहते हैं, हम बहुत सुख प्राप्त करेंगे इसलिए मेहनत करते रहते हैं। हम वो कथा बता रहे थे ना, दो गधे होते हैं और एक गधा क्या है, ऐसे IBM में काम ले लेता है ना वो दूसरा गधा अपना क्या है, घास खाते ऐसे जंगल में चलता रहता है ना? हम उस दिन चर्चा कर रहे थे। तो आशा कर रहा है कि एक दिन IBM कंपनी के मालिक है वो अपने पत्नी को मुझे दे देगा विवाह में, ऐसे आशा करके बहुत मेहनत करते रहते। या प्रभुपाद जी भी कहा करते थे वो, क्या करते हैं वो, क्या दो भी क्या करते हैं, एक लकड़ी से वो घास को ठान देते हैं सामने, लकड़ी को बांध के उसको घास ठान देते हैं। और गधा क्या करता है, वो अभी घास मुझे मिलेगा करके ऐसे सामने जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, और उसके ऊपर बहुत सारा बोझा डाल देता है। थोड़ा बहुत घास के लिए इतना बोझा उठाता है, ये गधे का लक्षण है। तो आधुनिक समाज में सभी लोग क्या है, एक नंबर का गधे बन गए हैं, निपट मूर्ख बन गए हैं। क्यों, भौतिक जगत में सुख नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भौतिक जगत का सृष्टि हुआ। और बाद में भगवद्धाम लौट के जाना है, ये प्रोग्राम है। लेकिन ये लोग यहाँ भौतिक जगत को सुखालय बनाने के लिए इतना सारा बोझा उठाए, तो इसलिए यहाँ पर तो भगवान मूढ़ कहते हैं इनको, और प्रभुपाद जी निपट मूर्ख ऐसे बता दिया। प्रहलाद महाराज इनको विमूढ़ कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। कहाँ पर बताते हैं वो प्रहलाद महाराज? नहीं वो द्विजपर दुरत्य वैतरण्य तद्वीर गायन महामृतमग्न चित्तो सोचेत तथा विमुख चेतस इंद्रियाता माया सुखाय बरमुद्भवतो विमुड़ान विमुड़ा। तो उनका लक्षण वो क्या बोल रहे? तो वास्तव में वो अपना दया दिखा रहे कि भगवान आपके वीर्य गाथा को गाते हुए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। वो अमृत के सागर में तैर रहा हूं ऐसा लग रहा मुझे, मग्न चित्तो हमेशा मग्न रहता हूं उसमें मैं। लेकिन फिर भी वो दुख का दुख व्यक्त करते हैं प्रहलाद महाराज। शोचे मैं शोक कर रहा हूं, विमुख चेतसा जिन्होंने अपने मुंह को आपके विरुद्ध मोड़ लिया है, या उनका चेतना कृष्ण चेतना से भौतिक चेतना बन गए, विमुख चेतसा। इंद्रियार्थम किसके लिए? इंद्र तृप्ति करने के लिए। माया सुखाय बरमोद्भवतो विमुडान, ऐसे जो माया सुख को प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे बोझा उठा रहे, इसलिए वो बहुत ही मूर्ख है, ऐसे निपट मूर्ख है ऐसे कह रहे प्रहलाद महाराज। ये सातवें स्कंद के नवे अध्याय का 93वां श्लोक है। ये प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव को प्रार्थना अर्पण किया। तो कैसे ये लोग माया सुख के लिए, कैसे बताइए माया सुख क्या है ये? जो चीज आराम के लिए आराम से मिल रहा है उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। माया सुख वो है जो ऐसे प्रतीत होता है कि हमें सुख प्राप्त होगा लेकिन प्राप्त नहीं होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया ऐसे ऑटोमोबाइल, यहाँ पर दिन रात ऐसे भगाते हैं ना ये लोग। ये लोगों ने सोचा कि हम लोग ऑटोमोबाइल बना के क्या करेंगे, बहुत सुविधाजनक बनाएंगे जीवन को, लेकिन उससे क्या सुविधाजनक हो गया? नहीं हुआ, है ना। वो गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है, इतना ट्रैफिक का, इतना बड़े बड़े शहरों में इतना समस्या है, इसलिए ये माया सुख है। ऐसे लोग सोचा था कि हम लोग ऐसे गाड़ी चला के आनंद लेंगे, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए जगह ही नहीं, इसलिए उनको सुख के बजाय क्या हो गया? जीवन नरक बन गया। तो इसको माया सुख कहते हैं। तो और ऐसे कैसे ये बोझा है ये? बरमुद बहुतो विमुडान, उसको बनाने के लिए हजारों फैक्ट्री बनाना चाहिए, है ना, इसलिए वो बहुत बड़ा बोझा है और बहुत कड़ी मेहनत उग्र कर्म करना चाहिए, इसलिए वो बोझा है वो। और क्या है, रोड नहीं है तो इसलिए बड़े बड़े वो फ्लाई ओवर बनाओ, रास्ते ऐसा रास्ता बनाओ, इतना सारा रास्ता बनाओ। तो और मेट्रो आजकल वो भी चल रहा है ना सब जगह, बहुत ही ये सभी यू नो अलग अलग राज्य के जो सरकार है बहुत ही उनके राजधानी में वो मेट्रो बना रहा है और उसको बहुत ही गर्वित है उसके लिए। हमारा मेट्रो दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है ना, और बेंगलोर में नम मेट्रो ऐसा एडवर्टाइज करते हैं जैसा कि वो बहुत अच्छा चीज़ है। कर मूर्ख लोग इतने सारे बोझा उठा रहे हैं ना, बड़े बड़े बांध बांधना, बड़े बड़े क्या क्या नहीं कर रहे, बड़े बड़े बांध बांधना, इतना सारा खुदाई करना, माइनिंग बोलते हैं ना उसको, खुदाई करना, और ये सब सभ्यता को चलाने के लिए इतने सैकड़ों फीट जमीन के अंदर खुदाई करना, वो इसके लिए क्या है, तेल निकालने के लिए। तो उसको अलग अलग देश से दूसरे देश तक सप्लाई करना, उसके लिए कितना सारा तनाव, देशों के बीच में तनाव हो जाता है, इसके कारण बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं। तो ये सब अननेसेसरली बोझ है। क्यों चाहिए ये सब चीज? शांति से बैलगाड़ी चलाओ, चल के जाओ, चल के जाओ, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा इसका। इसके कारण और भी स्वास्थ्य भी इतना बिगड़ गया लोगों का। और ऐसे उन सब इस ये सभ्यता चलाने के लिए सभी लोगों को शहरों में डालना पड़ेगा, इतना पैक्ड है। भारत में ऐसे लोग रहते हैं, अमेरिका में ऐसे लोग स्वतंत्र घर होता है उनका, अलग अलग घर में रहते हैं वो लोग, ऐसा नहीं रहते हैं लोग। उनको सभी शहरों में डालना, अभी आगे जाके पानी भी नहीं मिलने वाला, वो गटर का पानी रिसाइकल करके वो देने वाला आपको। तो ये यहाँ पर इसलिए गधे के साथ साथ क्या है प्रभुपाद जी, सुअर का भी उदाहरण दे रहे, सुअर बना रहे लोगों को। ये मूर्खता है आधुनिक समाज का, है ना। और अपने आप को बहुत संशोधन करते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, दार्शनिक मानते हैं, सब निपट मूर्ख है बस, और कुछ नहीं। हुँ? सिर्फ वो मल काने वाला है बस, अभी आगे जाके उतना ही है। आप इतना प्रगति कर दिया कि एक सुअर के साथ स्पर्धा कर रहे, अभी कुत्ते के साथ स्पर्धा कर रहे है। कुत्ता चार पहियों के ऊपर भागता है, ये लोग कुत्ता चार पाँव के ऊपर भागता है और ये चार पहियों के ऊपर भागते हैं कुत्ते के साथ, अभी आगे जाके सुअर के साथ स्पर्धा करेंगे। वो प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए थे तभी हो रहा था वो। हाँ, वो लोग कुछ युवक युवती लोग वो क्या कर रहे थे, सुअर को अपना नेता बना के उसको गार्लैंड डाल के अपने शरीर के ऊपर सभी मल लगा के उसके साथ नाच रहे थे। प्रभुपाद जी ने दो जगह ऐसे देखा होगा। तो गधा और सुअर, ये विश्वविद्यालय से निकले हुआ तरुण तरुणिया है, ये इनका करते है, इसलिए ये लोग मूर्ख है। तो जब भी हम लोग कुछ करने के लिए सोचते हैं उसके कारण बहुत सारे समस्याओं का हम लोग जागृत करते हैं, सृष्टि करते हैं। तो ऐसे आधुनिक समाज ये समस्या और उनके उपाय के जो चक्र है उसमें गिर गया है। और ये पहले वर्ग का व्यक्ति है, और दूसरे वर्ग का व्यक्ति है चाहे दुष्कृति, वो दूसरा प्रकार के दुष्कृति कौन है, नराधमा, नर्व में अधम। यहाँ पर बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद समझाते, देखे 84 लाख योनि होते हैं, आप जानते हैं ना वो श्लोक, जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष वंशति क्रमयो रुद्र संख्या को, ऐसे कर्म पुराण में वर्णन, और वो अन्य एक और पुराण में भी, एक और अन्य पुराण में भी वर्णन आता है ना ये 84 लाख में, किसी को पता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन आता है। उसमें क्या है, 4 लाख योनि है मनुष्य के, लिख लेंगे कौन कौन से कितना कितना है करके श्लोक बुक। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, चौरासी लाख जीव जाति कितना है, जलजा कितना है, जलचर कितना है बताइए, 9 लाख, और स्थावर, स्थावर मतलब व्हाट हैपेंड यू डिडंट गेट दैट, कितना कितना हो गया वो, क्या स्थावर मतलब क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज, जो वृक्ष कितने हैं, 20 लाख वृक्ष है, और क्या है वो, कृमि कितना है?
11 लाख
लिख लीजिए महात्मा जी माधवेंद्र लिखना चाहिए। हाँ, और पक्षी नाम दशलक्षणम, 10 लाख पक्षी है जो उड़ते हैं। और तीस लाख पशु है। डार्विन की कृपा से बहुत सारा एक्सटेंट हो गया है ऐसा वो सोचता। और 4 लाख मनुष्य कितने हो गए टोटल? ये श्लोक भी याद रखना चाहिए, हमने भी याद रखा था लेकिन अभी भूल गया फिर से, इसको याद रखिए। हाँ, जरूरत है क्योंकि क्यों याद रखना चाहिए इसको, क्यों मृत्यु के बाद हम ऐसा ना हो जाए कि ऐसे योनि में चला जाए, इसलिए याद रखना चाहिए उसको। जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद हमें मनुष्य ही शरीर मिलेगा, तो याद रखना चाहिए इसलिए। और दूसरों को भी बोलना चाहिए देखिए आप ऐसे योनि में जा सकते हैं ऐसे करके, इसलिए याद रखना चाहिए। तो ऐसे 4 लाख योनि है और इन सभी 84 लाख योनियों को कैसे विभाजित किया गया बताइए। आधुनिक विज्ञान में भी ऐसे विभाजन किया जाता है, वो अलग अलग फैमिलीज स्पीसीज एंड और क्या है ऑर्डर ऐसे जींस नहीं हो हिंदी अच्छा आता है तो ऐसे होता है लेकिन वो सब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बाह्य जो लक्षण है उसके आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। जैसे वो लोग बिल्ली और शेर को एक ही वो एक ही बाग में डाल देते हो क्योंकि बाहरी तौर से देखेंगे तो वो दोनों एक समान दिखते हैं, हालांकि साइज अलग है लेकिन एक समान दिखते हैं। लेकिन ये जो है ये विभाजन किया गया है चेतना के आधार पर विभाजन किया गया। हम लोगों ने देखा ना कितने अलग अलग स्तर के चेतना होते हैं, कब चर्चा किया था हम चेतना के अलग अलग स्तर? तीसरे अध्याय के कौन से श्लोक में? 38वां श्लोक में, जहाँ पर भगवान बोलते हैं कैसे काम जो है भोग करने की इच्छा चेतना को दूषित कर देता है, उसके अनुसार अलग अलग चेतना होते हैं। हम लोगों ने अलग अलग चेतना का वर्णन किया था ना, 5 स्तर का, 3 स्तर के अलग अलग प्रकार के चेतना जो है हम लोग चर्चा किए थे। तो चेतना के अनुसार इन सभी जीवों को विभाजित किया जाता है। तो चेतना क्या है? चेतना गुणों से प्रभावित रहता है, सत्व रज तमोगुण से प्रभावित रहता है, तो इनको भी ऐसे ही किया जा सकता है, ऐसा भी किया विभाजन किया जा सकता है। तो ऐसे 4 लाख योनि हैं मनुष्यों के। नर अधम मतलब नर मतलब मनुष्य, अधम मतलब सबसे नीचे। इन 4 लाख योनियों में सबसे नीचे जो व्यक्ति होता है उसको नराधम कहते हैं। पशुओं में और इस व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सिर्फ इस व्यक्ति को दो पांव होते हैं और पशुओं को 4 पांव होते हैं, बस वही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं रहता। वो श्लोक है ना हितोपदेशद में, आहार निद्रा वय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभि समाना। तो इसका अर्थ क्या है बताए, कौन बताएंगे? ये श्लोक पता है? पशुओं में श्रेष्ठ है या मनुष्यों में श्रेष्ठ? और तो मनुष्यों में धर्म विशेषता है, मनुष्यों में कि धर्म, धर्म क्या है? विशेषता। धर्म नहीं है तो मनुष्य क्या हो जाते हैं? वो पशु बन जाते हैं। तो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि सभी देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते हैं, सेक्युलर यू नो देश, कोई धर्म की जरूरत नहीं है। या दूसरे वो लोग ऐसे कहते हैं, आप कोई भी धर्म को आप अपना फॉलो कर सकते हैं, हम उसके बारे में कि राजा या सरकार जो होते हैं वो कोई धर्म में नहीं, हालांकि वो लोग सब उसका फायदा उठाते हैं, सब नेता लोग। सो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसका अर्थ क्या है प्रोपा जी? प्रोपा जी वो कम्युनिज्म साम्यवाद के ऊपर वो कमेंट करते हैं, वो टीका करते हैं कि साम्यवादी लोगों को धर्म जरूरत नहीं था, वो धर्म नहीं चाहते थे वो लोग। वैसे तो बहुत उन्होंने कठोर नियम बनाया, जो भी बाइबल पकड़ता है उनको हत्या कर देंगे ऐसे। तो ऐसे मार्क्स लेनिन ऐसे उन्होंने साम्यवाद को प्रचार किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी उसके ऊपर टीका करते हुए बताते हैं कि धर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, मनुष्य क्या है, मनुष्य समाज पशु समाज के स्तर पर हो जाएगा, धर्म ही नहीं ना पशु भी समान, धर्म नहीं है तो पशु के समान हो जाएगा समाज। तो ये सेक्युलर समाज या धर्म निरपेक्ष राज्य क्या है या समाज क्या है, ये पशु का स्तर के समाज है। वो ऐसे धारणाएं ऐसे ऐसे मत इसलिए वो लोग अपनाना चाहते, क्योंकि वो लोग तमोगुण में है, कोई बुद्धि उपयोग करके कौन सा सही धर्म है उसके ऊपर चर्चा और वाद विवाद करके उसको स्थापित नहीं करना चाहते। इसके कारण वो लोग ऐसे आलसीपन के पर बौद्धिक आलसीपन के कारण या तमोगुण के कारण ऐसे धर्म निरपेक्षवाद को स्वीकार कर, उसका लक्ष्य नतीजा क्या हो जाता है, मनुष्य पशु समाज के स्तर पर गिर जाता है। पशु मतलब वो तमोगुण में रहते हैं, ये लोग भी तमोगुण में रहना चाहते हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स इट इज अ लेजीनेस टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, दे डोंट वांट टू डिस्कस एंड डिबेट एक्चुअली। इसलिए ऐसा जब कोई चर्चा या वाद विवाद नहीं होता है तो क्या अर्थ, उसका अर्थ क्या होता है, वहां पर बुद्धि का बौद्धिक प्रगति नहीं हो रहा है, लोग अधोगति में जा रहे हैं, उसका समझ लेना चाहिए हम लोगों को। इसका अर्थ है तमोगुण में जा रहे हैं या पशु के स्तर पर जा रहे हैं। तो ये सेक्युलरिज्म का अर्थ है धर्मनिरपेक्षवाद कहते हैं उसको तो हिंदी में। तो यहां पर प्रभुपाद ये लोग नराधम मतलब क्या है, ये पशु के समान होते हैं, पशु तुल्य होते हैं, इनको सिर्फ दो पैर होता है, वही अंतर होता है। तो इस श्लोक में हम लोगों ने देखा धर्म नहीं है तो क्या हो जाता है, धर्म ही विशेषता है मनुष्यों का, धर्म नहीं तो पशु बन जाते हैं। फिर वो धर्म शब्द का क्या अर्थ है बताए उस श्लोक में, धर्म ही नहीं ना पशु भी समान, हमने बोल दिया धर्म शब्द का क्या अर्थ है बताए, धर्म का अर्थ क्या है और वो कौन सा धर्म है, हाँ कैसे वर्णाश्रम धर्म बताइए, हाँ संयमित जीवन करना, जैसे मैथुन को कैसे संयमित किया जाता है, विवाह के, विवाह मतलब क्या है वो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम मतलब क्या है, एक वर्णाश्रम का अंग है। तो पशुओं में कोई विवाह मतलब नाम का चीज नहीं रहता है, कैसे भी मिलना जुलना होता है उनके अंदर, उनको कुछ रोक टोक नहीं है, कुछ बंधन नहीं है मिलना जुलने में। पशु एक कुत्ता और कुत्ती मिलने मिलना जुलने में उसको कोई बंधन नहीं है, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी वो मेटिंग कर सकते हैं, बेशर्म होके रास्ते के ऊपर भी कर सकते हैं। तो समाज ऐसे हो गया, कोई स्त्री पुरुष के बीच में कुछ ऐसे मिलने जुलने में क्या है, बंधन नहीं है, रोक टोक नहीं है, तो वो कुत्ते बिल्लियों का समाज है। या दूसरे शब्दों में जब वर्णाश्रम धर्म नहीं है तो क्या हो जाता है, वो कुत्ते बिल्लियों का समाज बन जाता है। ऐसे कुत्ते बिल्लियों का समाज में लोग क्या है, भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, जो नराधम है वो भगवान के शरण में नहीं जाएंगे। ये भी एक कारण है क्यों वर्णाश्रम धर्म को हमें स्थापित करना चाहिए, भगवान को शरण जाने के स्तर पर तो आ जाओ पहले, बाद में हम चर्चा करेंगे वैष्णव बनना या भगवान के शरण में जाना, है ना। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को स्थापन करना समाज में बहुत जरूरी है, नहीं तो सभी लोग नराधम बन जाएंगे, कौन शरण में भगवान के शरण में जाएगा, सभी कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन बिताना शुरू कर देंगे, है ना। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में पहले वर्णाश्रम धर्म होना चाहिए, बाद में सब अन्य प्लानिंग में। वो प्लानिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं चलने वाला आपका, वो नहीं है तो। हाँ तो और इसके आगे और प्रॉपर वर्णन करते हैं, इसको विस्तार करते हैं। वर्णाश्रम धर्म मतलब संस्कार होते हैं, कैसे मनुष्यों को अच्छे मनुष्य गुड पॉपुलेशन बनाने के लिए, अच्छे संतान को बनाने के लिए कुछ संस्कार होते, गर्भदान संस्कार, ये सब मनुसंहिता में वर्णन किए गए। पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा ना क्या ऐसे संस्कारों का नाश होने से क्या हो जाता है, तो मनुष्य वर्ण संकर हो जाता है। वर्ण संकर का अर्थ है जो वर्णाश्रम में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है, वो पशुतुल्य है, वो नरकीय जीवन समाज को सृष्टि करेंगे, जैसे आधुनिक समाज में ऐसे हुआ। तो इसलिए ये सभी संस्कारों को पालन करना और वर्णाश्रम धर्म को पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज में ये होना ही चाहिए, नहीं तो वो नराधम हो जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं 99% जो लोग हैं सभी नराधम है, आजकल के 99% 99.9 है चलो प्रतिशत लोग क्या है 99। इसका अर्थ होता है हमारे महान भक्त लोग भी इसमें आ जाते क्योंकि वो लोग भी शरण में नहीं जा रहे, भगवान के शरण में नहीं जा रहे, कैसे न किसी तरह बाहरी तरह से ऐसे कुछ कुछ कर रहे हैं, है ना, पार्ट टाइम मेडिटेटर्स बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको तो 99.9% है ना, ये हम लोग कैलकुलेशन लेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो आ गए फिर इसलिए तीव्र न भक्ति योगे ना, जैसे आप लगे हैं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और तो इसके कारण क्या क्या होते हैं प्रभुपाद और आगे बता रहे हैं कि मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रितः। उनके सभी जो उनका जो क्या है विद्या वगैरह शिक्षण वगैरह सब क्या है सो शून्य बन जाता है। और प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे, ऐसे नराधमों का एक उदाहरण, जगाई और मदाइयों का उदाहरण दे रहे, वो लोग नराधम थे, वो नित्यानंद प्रभु ने उनको उद्धार किया। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनका आंदोलन जो हरे कृष्ण आंदोलन जो प्रचार प्रभुपाद जी ने प्रचार किया भारत सारा दुनिया में, वो ऐसे कई हजारों के संख्या में नराधमों को उद्धार कर रहा है, ऐसे कह रहे ये हरे कृष्ण आंदोलन जो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। और तो ऐसे नराधम उनका कैसे और उद्धार हो सकता है, ये भागवत धर्म को पालन करके, विशेष करके उसका जो सार है भगवद्गीता में दिया गया है, तो इसको एक श्रद्धा पूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए, तब जाकर हम लोग ऐसे स्थिति से उद्धार हो सकते हैं। तो सार में नराधम मतलब वो है जो लोग मनुष्य जीवन का जो महत्व को नहीं जानते हैं, तो वो नराधम। अगला दुष्कृति है कौन है, माया पहरत ज्ञान, तो जिनको ज्ञान जो है माया से हर लिया गया। सभी जो बुद्धिमान लोग तथाकथित बुद्धिमान लोग है विशेष करके आधुनिक विज्ञानी, वो लोग क्या है उनका माया द्वारा हर लिया गया है उनका ज्ञान, तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है बहुत सारा, ठीक है। और विशेष करके इस यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ऐसे मायावादी व्याख्या देते हैं भगवद्गीता के ऊपर, उनको माया पर्यत ज्ञान कहते हैं। वो बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो सकते हैं, संस्कृत भाषा जान सकते हैं, वो अनुवाद कर सकते हैं अच्छा अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान क्या है, माया माया पर्यत ज्ञान है। तो वो लोग परंपरा के जो अनुगत जो ज्ञान है तो उसको उसमें बाधा लाते हैं, ऐसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और उसके बाद तो अगला कौन है, आसुरम भावम आश्रित, आसुरम भावम आश्रित। इनमें और ये पहले चारों में क्या अंतर होता है, ये चार पहले जो है वो अज्ञान में रहते हैं, तो पहले तीसरा जो है वो बाहरी तौर पर वो बहुत ज्ञानी लगते हैं, लेकिन फिर भी वो भी अज्ञान में अंधकार में रहता है। और ये चौथा वाला है वो सीधा बाहर रूप से, वो पहले तीन लोग वो बाहर से ऐसे नहीं कहते, अपने आप को नास्तिक स्वीकार नहीं करते, हालांकि वो लोग भी नास्तिक है क्योंकि वो भगवान के शरण में जाते हैं। तो नास्तिक शब्द का भी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, अलग अलग परिभाषा हो सकते हैं, जो वेदों को नहीं मानते वो लोग नास्तिक है, वेद न मानिया बौद्ध हो लो नास्तिक, जो पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक है, आत्मा के अस्तित्व को जो नहीं जानते या स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक है। अंत में सर्वोच्च नास्तिकता का परिभाषा क्या है, भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करना या उनके शरण में नहीं जाना, वो नास्तिकता का सर्वोच्च परिभाषा है, स्तर है। ये लोग चौथे आसुरम भाव आश्रिता वो ओपनली आमने सामने क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को नास्तिक पुकारते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। पहले तीन लोग वो लोग भी नास्तिक है, लेकिन वो लोग सीधा सीधा तो नहीं बोलते हैं, अज्ञान के कारण वो ऐसे नास्तिकवाद में गिर गए हैं। ये लोग जानबूझकर और उसको सिद्ध करने के लिए और कई सारे प्रमाण भी या प्रस्तुत करते हैं, बहुत से ऐसे दर्शन शास्त्र प्रमाण करते हैं, दार्शनिक चीज जैसे आधुनिक समाज में बहुत बड़ा नास्तिक है एक, उनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस करके, तो उन्होंने कई सारे ऐसे ग्रंथ भी लिखा है नास्तिकवाद को प्रचार करते हुए, एक नाम है गॉड डेल्यूजन, ऐसे 207 ईस्वी में वो प्रकट हुआ, अभी 7 साल पहले, उसके बाद भी शायद एक ग्रंथ लिखा उसने, शायद ऐसे कई सारे उन्होंने ग्रंथ लिखा है, ब्लाइंड वॉच मेकर ऐसा भी एक ग्रंथ है उसका। तो ब्लाइंड वॉच मेकर मतलब जनरली भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ऐसे वॉच का उदाहरण दिया जाता है ना, वॉच आरंभ से क्या होता है, आरंभ से अंत तक उसको जो जब हम लोग उसको बनाते हैं, घड़ी घड़ी को बनाते हैं, उसके लिए बहुत सारे बुद्धि का जरूरत होता है। तो ये ब्रह्मांड भी एक घड़ी के समान चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ इसके पीछे भगवान है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये रैस्कल क्या बोलता है निपट मूर्ख क्या बोलता है कि इस ब्रह्मांड में कई सारे गलती ढूंढ के वो क्या बोलता है, बोलता है ब्लाइंड वॉच मेकर, इसको इतना बुद्धि नहीं था ऐसे बोलता ऐसे बनाने के लिए, तो ये मूर्खता है इसका, निपट मूर्खता, अलग अलग चीज। लेकिन ये मूर्ख लोग इनको पता नहीं है, जैसे एक उदाहरण देंगे तो वो अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ ग्रंथियाँ होते हैं यहाँ पर, उनको क्या कर दिए पहले ये डॉक्टर लोग और वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि ये सब इसका जरूरत नहीं है शरीर में, ऐसे उसको निकाल दिया होगा। ऐसे कई सारे चीज है जिसका हम जो जिसका हमें जरूरत होता है वो क्यों आवश्यक है हम उसको समझते नहीं, और हम लोग क्या निष्कर्ष में आते हैं, कि इनका जरूरत नहीं है करके, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये लोग सोचते हैं कि भगवान को क्या है, भगवान बुद्धिमान नहीं है, ऐसे चीजों को रख दिया इस सृष्टि में जो जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे लोग उसको सिद्ध करने के लिए कोशिश। तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है इसलिए तुम क्या कह रहे हो, इसलिए तुम क्या कह रहे हो, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान क्या है वो बुद्धिमान नहीं है, ऐसे कह रहे हो। तुम्हारे बुद्धि न होने के कारण वो भगवान को बुद्धिमान नहीं बना रहा, नहीं जानते हो, तो वो समस्या। क्या ये लोग ऐसे कह सकते हैं कि हम सृष्टि में जो कुछ भी चीज है हम सब कुछ जान सकते हैं उसका, उसके पीछे ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? उनका इतने सारे मत है, धारणाएं हैं, वही सिद्ध करता है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और पूरा जटिलताओं में गिर रहे हैं इतने सारे, और फिर भी इतना एरोगेंस, इतना मूड नास्तिकता को, रैस्कलडम वो प्रकट करते हैं कि मैं सब कुछ जान सकता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसे दिखाता है ना। इनको माँ आसुरी भाव माश्रित कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि, और इसमें भी और प्रभुपाद जी उल्लेख दोनों उदाहरण क्या देते हैं इसमें भी, उसके लिए भगवद्गीता के ऊपर जो गलत व्याख्या देते हैं वो लोग भी आसुर भाव है, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं वो लोग। तो अंत में वो श्रील प्रभुपाद वो यमुनाचार्य के श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को बार बार उल्लेख करते हैं, इसी अध्याय के 24वें श्लोक के तात्पर्य में इस श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने अनुवाद उल्लेख किया है। त्वं शील रूप चरित परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलश्च शास्त्र प्रख्यात दै परमार्थ विधामतिश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोधुम। हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त है। त्वं शील रूप चरितय परम प्रकृष्टय, परम प्रकृष्टय विलक्षण, तो सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो सब नैवासुर प्रकृतया प्रभवंति बोधुम, तो असुर लोग जो लोग है वो आपको समझ नहीं पाएंगे, ऐसे कहते हैं ये सब असुर है। ठीक है, चार प्रकार के जो लोग है वो असुर है। अतः ये मूढ़ नराधा माया प्रहत्र ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्टुति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र अथवा आचार्य ऐसे उपदेश क्यों ना देते रहे। तो हम लोग दुनिया को हम लोग कैसे समझते हैं, दुनिया के लोगों को कैसे हम लोग समझते हैं या मापते हैं कृष्ण भावनामृत में, बताइए हम लोग कैसे समझते हैं उनको या कैसे उनको मापते हैं, हाउ वी मेजर पीपल, है ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन योग्य है अयोग्य है या कौन श्रेष्ठ है, कैसे हम उसको मापते हैं। या ये श्लोक के अनुसार हम उनको सबको मापते हैं। तो क्योंकि वो भगवान के शरण में जा रहा है इसलिए वो लोग ये चार भागों में आना ही चाहिए। जो भगवान के शरण में जाते नहीं है ये मूढ़ तो होना चाहिए, नराधम होना चाहिए, मायाप्रह तो होना चाहिए या आसुरम भाव, ऐसे एक में से होना ही चाहिए वो लोग। यही हमारा ये श्लोक हमारा क्या है, बैरोमीटर, दूसरों को देखने की, यू नो वो क्या है, कुछ भी बोले आप, टेलीस्कोप बोले माइक्रोस्कोप बोले, ये श्लोक यंत्र है, ये दूरदृष्टि यंत्र के समान है ये वास्तव में ये सही दृष्टि का यंत्र है ये श्लोक। ऐसे ही तुरंत ही आपको समझ लेना चाहिए, भगवान के शरण में नहीं गया कितना भी हो, बड़ा बड़ा व्यक्ति हो, उसको नोबेल उपहार प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा पीस क्या है शांति स्थापना करने के लिए प्रयास कर रहा है, बहुत बड़ा बाबा है, लामा है, कोई है, कुछ भी है, वो भगवान के शरण, कृष्ण के शरण में नहीं गया, इसलिए कौन है वो मूढ़ नराधम आसुरम भावम आश्रित माया पर्वत गया। ये हमारा दर्शन, ये हमारा दृष्टि। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये श्लोक को भी उल्लेख करते थे। वो कभी कभी लोग विचलित होते थे, क्यों प्रभुपाद जी ऐसे कड़े कड़े शब्द, बहुत खड़क खड़क शब्द उपयोग कर रहे हैं, रैस्कल, फूल्स, निपट मूर्ख, मूढ़, ऐसे क्यों उपयोग कर रहे हैं? प्रभुपाद जी उल्लेख करते थे, ये हम नहीं उपयोग कर रहे, भगवान ने उपयोग किया, हम तो यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, हम भगवद्गीता यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे बोलते थे प्रभुपाद जी। ये श्लोक को उल्लेख करते, ये और भी कई कई जगह पर भगवान बोलते हैं मूढ़ करके। तो ऐसे प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर, हमने ये क्योंकि हम परंपरा में आते हैं और हमारा जिम्मेदारी है कि भगवान यथारूप प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए हम लोग यथारूप प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम नहीं बता रहे, भगवान बता रहे ऐसे, ऐसे प्रभुपाद जी कहते। तो ऐसे हमें भी समझना चाहिए, ये लोग ऐसे है, मूढ़ है, नराधम है, आसुरम भाव माया पर रत गया, जो भगवान के शरण में आता है वैसे लोग है। तो उनको ज्यादा कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा ऐसे परवाह नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी बकवास बोलते हैं, बकबक, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ना कभी कभी गधा भी क्या बोलता है, कुछ दर्शन शास्त्र बोलता है, लेकिन उसका दर्शन शास्त्र क्या है, सिर्फ दूसरों को डिस्टर्बेंस है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, अपना अपना दर्शन बोलते रहेंगे, है ना, हमें समझना चाहिए एक नंबर का गधा है करके ये बस। हाँ सब लोग आके बोलेंगे ना, आपके सगे संबंधी, आपके माता पिता, सब लोग बोलेंगे, पति पत्नी सब लोग बोलेंगे, बहुत बड़ा दर्शन बोलेंगे वो लोग, लेकिन सिर्फ एक नंबर के निपट मूर्ख गधे है बस, और कुछ नहीं। तो हमारा ये धारणा है, हम इसलिए उनको ज्यादा परवाह नहीं करते, दुनिया के लोगों को ज्यादा परवाह नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो ये कैटेगरी में है, वो उनको उनका उनका मत को लेकर क्या करना है हम लोग, है ना। ब्रह्मचारी उनको विशेष करके, तुम ऐसे ही अपने माता पिता को छोड़कर ऐसे ही आ गया, क्या योग्य है क्या, ऐसे बोलता है, तुम्हारा क्यों सुनना चाहिए हम लोगों को, तुम क्या बकवास बोलते हो क्यों सुनना चाहिए, तुम एक नंबर का गधा हो, निपट मूर्ख हो, तुम बड़े बड़े बात करते हो, ऐसे उनको कह सकते, ठीक है। अगला श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्ताति ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो पिछले श्लोक में दुष्कृति शब्द आ गया था, जो दुष्कृति है वो ऐसे कार्य करते हैं, बाहरी तौर से वो अच्छा कार्य हो सकता है लेकिन सभी वो बुरे कार्य, क्योंकि वो भगवान को नहीं रखते हैं या शास्त्रों को नहीं पालन करते, लेकिन ये लोग जो है वो सुकृतिवान ऐसे लोग है, शास्त्रीय विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं, इनको सुकृतिवान कहते हैं। तो ये दोनों अंतर है, सुकृति और दुष्कृति, अपोजिट टर्म्स। ऐसे चार प्रकार के सुकृतिवान लोग होते हैं। ये सुकृति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इस जगत में चार प्रकार के जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ना, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। अर्थ मतलब बहुत ही कष्टों को भोग रहे हैं, झेल रहे हैं ऐसे लोग। जिज्ञासु है, वो समझना चाहते हैं कि परम सत्य क्या है। और अर्थार्थी, अर्थ का इच्छा करते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में कई सारे पाएंगे हम लोग, सबको चाहिए ना, सभी कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, सभी बहुत सारा संपत्ति का इच्छुक है इस दुनिया में। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कष्ट नहीं चाहिए, भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए इस जगत में? कोई नहीं, कोई नहीं है वास्तव में। लेकिन सभी लोग भगवान के शरण में नहीं आते हैं। क्यों शरण में नहीं आते हैं? क्योंकि वो सुकृतिवान नहीं है। तो इसलिए सुकृतिवान शब्द क्या है वो महत्वपूर्ण है, कि जो सुकृतिवान है वही भगवान के पास आते हैं, शास्त्रीय नियमों को पालन करते हैं। तो आजकल कौन करता है? ऐसे कोई सुकृतिवान है क्या? नहीं है। भक्तों का जिनके ऊपर कृपा होता है वही लोग सुकृतिवान बन जाते हैं। कोई भक्त लोग जाके कुछ प्रसाद दिए, पुस्तक दिए, उनको प्रचार किए, या मंदिर में कभी तो आ गए एक आध दिन, तो ऐसे वो लोग सुकृतिवान हो जाते हैं। जब कष्ट आ जाता है तो फिर वो भगवान के शरण में आ जाते हैं। या दूसरे शब्दों में, अभी तक ज़्यादा सुकृति को अर्जित नहीं किया, वो भक्ति स्वीकार करते हैं लेकिन क्या है, फिर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सुकृति है, बाद में उनको माया के द्वारा एक लात पड़ गया तो फिर वापस आ जाते हैं, वो दूसरे शब्दों है ना, ऐसा भी होता है ना, भाग के भागे भागे आ जाते हैं भगवान के पास। तो ये सुकृति न शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे युद्ध में प्रभुपाद जी उदाहरण, दूसरे महायुद्ध में क्या हो गया, जर्मन और इंग्लैंड है, ये दोनों युद्ध कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जो जर्मन के लोग थे विशेष करके जो माताएं हैं, वो लोग भी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जो पति या बच्चा जो है युद्ध में मरना नहीं चाहिए, वापिस आ जाना चाहिए, ऐसे घर आना चाहिए, ऐसे वो लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पर अंग्रेज लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे पति या बच्चा जो है वो घर वापिस आना चाहिए, हे भगवान ऐसे कुछ कृपा कीजिए। ऐसे जिनके घर में वापिस नहीं आए वो लोग सब क्या हो गए, नास्तिक बन गए। उसका अर्थ क्या है, वो सुकृतिवान नहीं है, इसलिए भगवान के शरण में नहीं जाते। गए थे वो लोग लेकिन फिर भी उनका सुकृति उनको उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए सहायता नहीं हुआ। तो ऐसे होता है। तो ये सुकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में रूप गोस्वामी का जो भक्ति रसामृत सिंधु से श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, कि शुद्ध भक्ति या उत्तमा भक्ति, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, ऐसे कई सारे नए नाम है ना उसके लिए, तो उसका क्या परिभाषा है कि अन्य भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को शून्य बना देना चाहिए, सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होना चाहिए। और ज्ञान कर्माद अनावृतम, ऐसे भक्ति ज्ञान कर्म योग तपस्या वैराग्य, ऐसे अन्य जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है हमने बहुत सारे देखा ना, उनसे आवृत नहीं होना चाहिए, उनका ज़्यादा मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, ज्ञान कर्माद अनावृतम, और अनुकूल भावना से भगवान को अपने शरीर मन और वाणी को उनकी सेवा में लगना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से हमारे मन को मतलब भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। वैसे कंस भी भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा था लेकिन प्रतिकूल भाव से कर रहे थे, कैसे हम भगवान कृष्ण को मारेंगे, उनको कैसे हत्या करेंगे, ऐसे वो सोच रहे थे, वो अनुकूल लेना नहीं है। कोई भक्ति कर सकते हैं, भक्ति के जो तथाकथित अंगों को पालन, ध्यान करना भगवान के ऊपर, स्मरण, भगवान को स्मरण करना, वैसे तो कहा गया है जितना कंस भगवान को स्मरण करता था भक्त लोग, साधारण भक्त लोग भी नहीं करते हैं उतना वो स्मरण किया उस भगवान, लेकिन क्या है वो भक्ति नहीं है, हमारे आचार्य उसको भक्ति स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो अनुकूल भाव से नहीं था। तो अनुकूल भाव से भगवान को स्मरण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये भावना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनुकूल भाव, अनुकूल लेना, अनुकूल लेना। अनुकूल भाव नहीं है तो क्या हो जाता है, वो भक्ति नहीं होता। हालांकि बाह्य तौर पर आप बहुत सारा सेवा कर रहे होंगे या भक्ति के अंगों को स्मरण कर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वो सब कर रहे होंगे, लेकिन अनुकूल भावना होना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अनुकूल भावना है। वैसे चाणूर और मुष्टिक भी क्या किया भगवान के प्रति, वो युद्ध करने के लिए, यू नो, जो मल्ल युद्ध किया उन्होंने, रसलिंग, भगवान को आनंद आया उससे, क्योंकि वो भी आस्वादन करना चाहते हैं रसलिंग का आनंद क्या होता है करके। लेकिन वो चाणूर मुष्टिक का जो मल्ल युद्ध, उन्होंने जो सेवा किया वो क्या भक्ति है, क्या नहीं भक्ति है। यहाँ पर भगवान को प्रसन्नता मिल रहा है फिर भी वो भक्ति नहीं है। दूसरे ओर भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं आपसे, वो लेकिन वो भक्ति हो सकता है, अनुकूल भाव है तो। उसके लिए उदाहरण क्या बताए, भीष्म पितामह का कैसे उदाहरण है बताइए। वो क्या करते हैं, वो तीर अर्जुन को बहुत, है ना, क्या है, घायल कर देते हैं और भगवान को भी घायल करते हैं। तो विशेष करके अर्जुन बहुत ही हारने वाले थे अभी युद्ध, इसलिए उनका भक्ति है भीष्मदेव का, लेकिन फिर भी भगवान अपन अप्रसन्न लग रहे हैं, है ना। यशोदा माता का भी उदाहरण है, क्या उदाहरण है वो, कि वो यशोदा माता स्तनपान करा रही थी भगवान कृष्ण को, और उन्होंने देखा कि वो चूल्हे के ऊपर क्या है, दूध उबल के गिर रहा है, तुरंत ही भगवान को नीचे रख के वो चले गए वो दूध निकालने के लिए। तो तब भगवान बहुत गुस्से हो गए, इसलिए उन्होंने सब छोड़ दिया ना, तोड़फोड़ कर दिया उन्होंने। यहाँ पर भगवान गुस्से हो रहे, लेकिन वो यशोदा मैया का भक्ति नहीं है, वो फिर भी भक्ति है। क्यों, क्योंकि वो दूध भी भगवान कृष्ण को ही था। विशेष करके यशोदा मैया वो विशेष गायों का दूध निकालते थे भगवान कृष्ण के लिए, वो उनका नाम भी दिया गया है ना, किसी को पता है क्या नाम है वो, तो बताया गया कि ऐसे लाखों गाय होते थे, उनका दूध निकाल के वो कुछ गायों को दिया जाता था, 1 लाख गायों को, 9 लाख गाय थे, 1 लाख गाय को दिया जाता था, 1 लाख गायों को, 10,000 के गायों को वो दूध पिलाया जाता था, और उनका दूध क्या है तो 1,000 गाय, 1,000 गायों का 100 गाय को, 1,100 गायों का 1 गाय को दूध दिया, 10 गाय को, 10 गायों का दूध 1 गाय को दिया, उस गाय का दूध फिर भगवान कृष्ण को दिया जाता, तो ऐसे विशेष दूध उसको, है ना। तो एनीवे, तो इसलिए वो सेवा है बहुत ही सुगंधित, बहुत ही पुष्टिवर्धक, ऐसे दूध होता है, बहुत ही रसीला वो दूध होता है, उसका नाम भी दिया गया, हम भूल गए आज। तो ये सेवा है, ये भक्ति है, ये उत्तम भक्ति है, केवला भक्ति है, अनुकूल भाव से भगवान को सेवा करना चाहिए। तो एनीवे, ये भावना है। ये लोग, चार लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये चार लोग जो है ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि इनको ऐसे भावना नहीं है यहाँ पर, जैसे इस श्लोक में दिया गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान, वो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान की शरण में आ रहा है। हालांकि वो सुकृतिवान है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो आ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी भी शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने के लिए क्या योग्यता है उसका वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। ये सब ये परिभाषा देकर इसके आगे, एक व्यक्ति के अंदर भगवान को सेवा करने के लिए क्या है, उनको सेवा करने के लिए, ऐसे भक्ति सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, उसको ही श्रद्धा कहते हैं। जो भक्तों को संग करने से या आध्यात्मिक गुरु गीता भागवत से जो उपदेश देते हैं उसके आधार उससे वो श्रद्धा प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अनासक्ति और आसक्ति जो अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए वो नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है आसक्ति है तो क्या हो जाता है, भौतिक जगत से हम लोग भोगी बन जाएंगे, और अनासक्ति भी जो अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, तो वो अनासक्ति है तो क्या हो जाएंगे, हम लोग ज्ञानी बन जाएंगे, भक्त नहीं बनेंगे, भक्ति के लिए वो ये नहीं आएगा, या मुक्ति का इच्छा करेंगे हम, सेवा करने का इच्छा नहीं होगा हमारे अंदर। सो भुक्ति मुक्ति प्रहायावाद पिशाची रतिवर्तते, ये भुक्ति मुक्ति नहीं होना चाहिए। वो किसके कारण होता है, ज़्यादा आसक्ति और अनासक्ति के कारण होता है। कोई कोई लोग अनासक्ति से भी आसक्त रहते हैं, वो लोग समझ में आ गए अनासक्ति से आसक्त रहते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो भक्ति नहीं है। और उसके बाद में रूप गोस्वामी तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं, जो अलग अलग योग्यताओं को लेकर, अलग अलग स्तर के योग्यताओं को लेकर भक्ति में प्रवेश करते हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, उनके ज्ञान और श्रद्धा के अनुसार, शास्त्र के ज्ञान और श्रद्धा के अनुसार। और उसके बाद में वो कहते हैं कि ये चार लोग है, कनिष्ठ से भी निम्न है, ये अभिशुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं किया, ऐसे वो कहते हैं। या इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कनिष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कनिष्ठ लोग इंद्र तृप्ति से आसक्ति रहते, ये लोग इंद्र तृप्ति की इच्छा से भगवान के शरण में आए, है ना, आर्थो जिज्ञास और अर्थार्थी, कि वो कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, उनको धन वेल्थ चाहिए, या जिज्ञासु है, ज्ञानी है, है ना, ऐसे एक कहते हैं। और भगवद गीता में भी बताया गया है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति शोक नहीं करता है, जब कष्ट आ जाता है तो उससे शोक नहीं करता है, न शोचति कांक्षति, कांक्षति श्लोक न क्रमांक क्या है, ये 18वें अध्याय का 54 54। तो ऐसे वो आकांक्षा नहीं करता है, वो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वो योग्यता है, वो भी उस श्लोक में भी क्या है, भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए योग्यता है। लेकिन ये लोग ब्रह्मभूत स्तर पर नहीं है, इनको कोई भौतिक कामना है, कांक्षति शोचति कर रहे हो, तो इसलिए ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है। और रूप गोस्वामी इनके लिए क्या क्या उदाहरण देते हैं, इन चारों के लिए कोई उदाहरण है आपको शास्त्रों में, भागवत में विशेष करके, किसी को पता है, वो आर्तो कौन है, गजेंद्र, और जिज्ञासु कौन है, चतुर्थ जिज्ञासु चतुष कुमार, कहाँ पर जिज्ञासु किया उन्होंने, जिज्ञासु के लिए कौन उदाहरण बताए, शौनक आदि ऋषि, जो नैमिषारण्य में ऋषि थे वो उदाहरण है। और तीसरा क्या है, आर्तार्थी कौन है बताइए, ध्रुव महाराज, हाँ वो अपने जो कौन है, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके पिताजी थे उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद महाराज के पिताजी थे स्वयं भूमन के पिताजी थे ब्रह्मा जी, तो क्या बोलते हैं उनको, ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रपितामह, तो प्रपितामह से भी ज़्यादा राज्य चाहते थे, बड़ा राज्य चाहते थे, मतलब ये भौतिक ब्रह्मांड से, भौतिक ब्रह्मांड से भी ज़्यादा राज्य चाहते थे, आध्यात्मिक जगत चाहते थे, उसके ऊपर राज करना, अर्थार्थी। और चौथा ज्ञानी के लिए क्या उदाहरण दिए, चतुष कुमार, क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे, ज्ञान में थे, ज्ञान में स्थित थे वो। ये चार उदाहरण हम लोगों ने देखा कि ये जो चार लोग हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हम ये उदाहरण जो ले रहे हैं वो लोग शुद्ध भक्त का उदाहरण है ना, है ना। चतुष्कुमार तो वैकुंठ गए, और आप विशेष करके आप ये नैमिषारण्य में जो ऋषिगण थे वो जिज्ञासु थे, वो कैसे जिज्ञासा किया उन्होंने, वो भी एक भक्ति का अंग है ना, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना है ना। वो कैसे जिज्ञासा किया उन्होंने भगवान की लीलाओं को, हम लोग जानना चाहे पहले अध्याय में, प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में छह प्रश्न आते हैं, बताए कौन कौन से प्रश्न है वो, कौन बताएंगे छह प्रश्न? सो मनुष्य के लिए सर्वोच्च धर्म क्या है? पहला धर्म, जब भगवान कृष्ण वापिस चले गए अपने धाम, वो अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न कि वो कैसे किनके आश्रय में रहा, वो दूसरा, और कौन कौन से, बहुत सारा है, सभी ने भागवत पढ़ लिया ना। परम सत्य का क्या परिभाषा आपके अनुसार, क्या परिभाषा परम सत्य का, है ना, वो बोलते हैं। और चौथा है, हम अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं। उससे पहले भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट होके सब बलराम, बलराम के साथ बहुत सारे लीलाएं किया, उनके उद्देश्य क्या था, तो ये चौथा था। और पांचवा था, हम अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं, अवतार कथा। तो ऐसे छह प्रश्नों को उन्होंने पूछा, ठीक है। तो ये प्रश्न से क्या हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये भक्त नहीं है? भक्ति का भी एक अंग होता है सद्धर्म प्रचार, सही धर्म के बारे में प्रश्न पूछना, वो भक्ति का अंग है। ये सही धर्म के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहे, ये जिज्ञासु नहीं कर रहे, ये भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त क्यों नहीं है ये? बताइए। ठीक है, गजेंद्र कष्ट में था, उन्होंने भगवान को पुकारा। प्रहलाद महाराज तो उनको भगवान कौन है वो भी पता नहीं था। ध्रुव महाराज वो ऐसे ढूंढते ढूंढते गए वो, फिर भगवान को देखने के बाद उन्होंने नकार दिया, मैं कांच के टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया लेकिन मुझे रत्न मिल गया, अभी और जरूरत नहीं, मुझे कोई वर का जरूरत नहीं, ऐसे बोल दिया भगवान को दर्शन करके। फिर कौन है? चतुष्कुमार, ठीक है, वो भी ब्रह्मवादी थे लेकिन भगवान को जब दर्शन किया वो भी भगवान के भक्त बन गए। लेकिन ये नैमिषारण्य के मुनियों को क्यों समय राय तक बदल ले बदल, क्या हुआ? सुत गोस्वामी उसे पहले वो भक्त नहीं थे, वो वैष्णव यज्ञ भी किया जा सकता है ना, आप दीक्षा के समय यज्ञ करते हैं, विवाह के समय यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग दर्शन शास्त्र को समझने के लिए प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? एक्चुअली वास्तव में वो लोग पहले सुत गोस्वामी आने से पहले वो लोग स्वर्ग की इच्छा था उनको, स्वर्ग जाने का इच्छा था उनको, स्वर्ग के बारे में वो प्रश्न पूछ रहे थे वो लोग पहले। बाद में उनके पिताजी थे ना पहले वक्ता रोमहर्षण सुत, जब बलराम जी ने उनको मार दिया तो फिर क्या हो गया, सुत गोस्वामी बन गए। सुत गोस्वामी तो शुद्ध भक्त थे, तो इसके कारण उनके संपर्क में आने के कारण वो लोग क्या करने लगे, वो भगवान के बारे में जिज्ञासा करने लगे, तो तब जाके वो लोग शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में क्या बोलते हैं, ऐसे लोग भी भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ऐसे यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझा रहे है ना। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। यहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, और क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। दुष्कृति में ऐसे कोई व्यक्ति है दुष्कृति में जो शुद्ध भक्त के संपर्क में आने के बाद शुद्ध भक्त बन गए, जगाए मगाए और मृगारी वो भी हत्या कर रहा था, कोई शास्त्रों के नियम सुकृतिवान नहीं था, वो दुष्कृति ही था, वाल्मीकि और कलयुग के अधिकतर जो व्रज गोपाल शुद्ध भक्त के संपर्क में आने के बाद सभी दुख शुद्ध भक्त हो जाएंगे और मृगारी का हो गए ना अमेरिकन हिप्पी लोग, वो लोग भी दुष्कृति थे, वो सब नराधम आते हैं ना, है ना, वो नरों में अधम, कोई धर्म नहीं, संस्कार नहीं, कुछ नहीं, पशुतुल्य जीवन बता जी रहे थे, स्त्री पुरुष साथ में रहना, फ्रेंड्स करके प्रभुपाद जी कहा करते थे, आपके क्या है, आपके देश में आप लोग फ्रेंड्स बोलते हैं, हमारे देश में उनको हम वेश्या बोलते हैं, ऐसे होते आजकल आधुनिक भारत भी इतना प्रगति कर दिया, ऐसे वेश्या उनको बनाने में लेफ्ट एंड राइट ऐसे अनुमति दे दिया, है ना सोफिस्टिकेटेड वैश्यास, पीएचडी वैश्यास मिलेंगे आपको आधुनिक समाज और कुछ तो ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं, तो ऐसे होता है। तो यहां पर वो सब वर्णन करते हैं श्लोकों का। अगला श्लोक, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो जब रूप गोस्वामी इनके बारे में वर्णन कर रहे थे, भक्ति के योग्य कहते के लिए स्वीकार, ये लोग अयोग्य है शुद्ध भक्ति के लिए, जब उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि उनको कुछ अन्य अभिलाषा है इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं है, तब इस ज्ञानी के बारे में वर्णन करते हैं। ये जो ज्ञानी है ही इज ऑलमोस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लव, ऐसे बोलते हैं, वो मेरे लिए प्रिय है और मैं उनके लिए प्रिय हूं, वहां पर ये श्लोक भी उल्लेख किया था उन्होंने। तो एक भक्तिर विशिष्यते, तो क्यों ये ऑलमोस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लव, मतलब उसका अर्थ क्या है कि वो जीवन में भगवान कृष्ण को लक्ष्य बनाने के स्तर पर प्राय उस स्तर पर है। तो कनिष्ठ मध्यम उत्तम कौन है ये लोग, वो लोगों ने अपने स्वीकार किया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण करके। ये जो चार लोग हैं अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है जीवन, हालांकि वो कृष्ण भक्ति कृष्ण के शरण में आए हैं, लेकिन उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे कोई भौतिक चीज को प्राप्त करना है। लेकिन ज्ञानी जो है वो प्राय ऐसे शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, इसलिए इन चारों में से वो श्रेष्ठ है, और विशेष करके भक्ति में आने के बाद इन चारों में से वो बहुत ही सुदृढ़ रहता है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हमारे शास्त्र के ज्ञान के अनुसार और हमारे श्रद्धा के अनुसार तीन वर्ग किए गए भक्ति के, तो ये व्यक्ति जो है उत्तम अधिकार को प्राप्त करके भक्ति में प्रवेश करता है, इसलिए भगवान इनको बहुत प्रिय मानते हैं। उत्तम अधिकारी, अधिकारी मतलब क्या है, अधिकार, अधिकार क्या है, श्रद्धा होना चाहिए और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। सर्वोच्च अधिकार को लेकर भक्ति में प्रवेश करता है। अधिकारी मतलब वो योग्यता के बारे में वर्णन हो रहा है, एलिजिबिलिटी। ऐसा नहीं कि वो भक्त है, ऐसे महाभागवत है या उत्तम भक्त है, यहाँ पर अधिकारियों के जो प्रवेश करते हैं उनके बारे में। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वो भक्तिरसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में लिखते हैं, ही इज ऑलमोस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लव, ऐसे बोलते प्राय वो प्रेम के साथ। प्रेम मतलब ये भक्ति में जो नवा स्तर जो प्रेम है वो नहीं है, क्योंकि ये यू नो एंटरिंग इन टू डिवोशनल सर्विस। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त अर्थ जिज्ञासु धनहीन ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है ना। अन्य लोग क्या है, उनका इच्छा पूर्ति होने के बाद वो जा भी सकते हैं, है ना, लेकिन ये रहेगा क्योंकि उनका ज्ञान है, नॉलेज है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भक्ति शास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं। क्यों इस अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, ताकि ऐसे हम लोग भी ऐसे योग्यता को प्राप्त करें और भगवान से प्रिय भक्त बन जाए, है ना। तो शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा और उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेषवाद ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त के संगति से अर्थ जिज्ञासु धन के इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए हमें ये भक्ति का ज्ञान या भगवान का ज्ञान से युक्त होकर हमें भक्ति करना चाहिए, तब हम लोग भगवान से प्रिय हो जाते हैं। इसलिए ये शास्त्र अध्ययन, गीता भागवत श्रवण करना, ये भक्ति के शास्त्र है, भक्ति शास्त्र है। और तो बहुत जगह बताया गया है, श्रुति शास्त्र, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। तो श्रुति पुराण पंचरात्र इन सभी शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर जो भक्ति नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, वो उत्पात हो जाएगा, अपने जीवन में भी उत्पात हो जाएगा और समाज में भी उत्पात हो जाएगा। हमारे ब्रह्मचर्य जीवन में भी उत्पात होगा और ब्रह्मचर्य आश्रम में भी उत्पात होगा। तो ऐसे उत्पात, और भागवत में भी कहा गया भक्त्या श्रुति ग्रहितया, ऐसे भक्ति करना चाहिए जो वेदों के ज्ञान के आधार पर है, ऐसे भावुकता नहीं है, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, भावुकता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, या फैनेटिसिज्म कट्टरता कट्टरवाद वो नहीं चलेगा। ज्ञान के आधार पर, भक्ति के आधार, ठीक है, जिसे भगवान की दिव्यता ऐसे ज्ञान के, जैसे अब जब हम लोग हमारा जो प्रचार भी कैसे होता है ऐसे ज्ञान के ऊपर आधारित रहता है। वो लोग जो समझ के इसको कृष्ण भावनामृत के हमारे ऐसे प्रचार के कारण जो अच्छी तरह से समझ के जो भक्ति में भक्ति को स्वीकार करते हैं वो टिकते हैं, नहीं तो अन्य लोग ऐसे भाव के स्तर पर जो रहते हैं वो टिकेंगे नहीं, है ना। यहाँ पर इसलिए ये उत्तर भारत में बहुत ऐसे भावुक लोग होते हैं, बहुत उनको ऐसे भगवद गीता का जो दर्शन शास्त्र है उसको अच्छी तरह से प्रचार करना चाहिए। विशेष करके ये जो सभी तात्पर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको बार तात्पर्य को समझ के उसके ऊपर प्रचार करना चाहिए। भगवदगीता हमारा मूल मूल क्या है, प्रचार का ग्रंथ क्या है, भगवदगीता गीता है। तो उसको हम अच्छी तरह से, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, बड़े बड़े विद्वानों को भी प्रचार कर सकते हैं आप। इस तात्पर्य है ना, हर एक तात्पर्य में ये उपनिषद से उल्लेख है, बड़े बड़े अन्य अन्य शास्त्रों से उल्लेख है। इसको ही अध्ययन करके भगवदगीता से उसको संबंध को प्रस्तुत करना है, तब वो लोग भी क्या हो जाएंगे, ऐसे भक्त बन जाएंगे जो भगवान को प्रिय हो जाएंगे, जिससे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। तो उदार सर्व एवैते ज्ञानी मात्वैव मे मतम आस्तिता स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेतसा व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से ही प्राप्त करता है। तो और आगे बोल रहे हैं उनके बारे में, हालांकि ये सभी लोग उदार है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं ये सब लोग महात्मा है, बोल रहे थे सब लोग महात्मा है। सब लोग महात्मा है क्यों? भगवान के पास तो आए है ना, वो है ना, भगवान के शरण में आए हैं। वास्तविक महात्मा उसका परिभाषा नवे अध्याय में वो कहते हैं, लेकिन फिर भी ये उदार ये वैते यहाँ पर शब्द आता है, तो विशाल हृदय वाले भगवान को ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए वो लोग महात्मा है। तो ऐसे ये सब लोग महात्मा है, महात्मा है, लेकिन उनमें से कौन है, वो जो ज्ञानी है वो सर्वोत्तम है, वो मेरे ही समान बोलते त्वात्वैव मे मतम ऐसे कहते हैं। और आगे बोलते हैं आस्तित संयुक्त आत्मा, ऐसे मेरे भक्ति में लग के दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मामेवानुत्तमां गतिम, मैं जो सर्वोच्च गति हूँ उसको वो प्राप्त करेगा। तो श्रील प्रभुपाद वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति भगवान के हृदय में हमेशा रहेंगे। साधुवा हृदय मयम साधुनाम हृदय तो अहम त्वद मदन्य ते न जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि। तो ये श्लोक भगवान कब बोले थे? दुर्वासु जी मुनि को बोले थे, क्योंकि दुर्वासु मुनि ने क्या किया था, अपने उनके शुद्ध भक्त जो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था उसने, इसके कारण उन्होंने बताया कि ये मेरे आपको रक्षा करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे भक्त क्या है बहुत ही प्रिय है। तो ये सब ये श्लोक बोलते हैं, साधु मेरे हृदय में रहते हैं, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता है, और मैं भी भक्तों के को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये दोनों श्लोकों को जोड़ देते हैं, इस श्लोक भगवदगीता के श्लोकों को और इस श्लोकों को। ज्ञानी क्या है? शुद्ध भक्त, भक्त कभी ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, वो कभी जाते नहीं। अन्य लोग है क्या है, तीन लोग है अपना, जो भी जिस चीज के लिए वो भगवान के पास आए थे वो पूर्ण हो गए तो जा सकते हैं वो, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जो भी भक्ति किया वो रहता है, लेकिन बाद में वो आगे बढ़ेगा, जैसे हम लोग छठे अध्याय के आरंभ में अंत में हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन ये जो भक्त है दृढ़ पूर्वक ये भक्ति में लगा रहता है, और ये कैसे भगवान के शरण में जाता है उसके बारे में वर्णन आता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये श्लोक भी हमें बहुत भक्ति में श्रद्धा लेकर आता है। कि कभी कभी लोग कहते हैं ना, वो प्रभुपाद जी वो बोलते हैं कहाँ पर कि भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्ति करना उतना आसान है तो क्यों? वो मनुष्यानाम सहस्र हम लोग चर्चा कर रहे थे, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यक्ति तत्वतः। उस वे विशेष व्यक्ति महात्मा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया कि जो भगवान के जानकर वो ज्ञान में भगवान के शरण में आते हैं। तो बहुत जन्मों से वो ज्ञान अर्जित करते हैं और अंत में भगवान के शरण में आते हैं। तो कोई कोई ऐसे मायावादी लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, ज्ञान भक्ति के स्तर पर लेके नहीं आता है, लेकिन जो भक्ति है वो ज्ञान के स्तर पर लेके आता है। भक्ति क्या है? वो कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, ऐसे वो लोग कहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर अलग बता रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों से ज्ञान प्राप्त करके तो ज्ञानवान मां प्रपदे मेरे शरण में आ जाते हैं। वो कैसे शरण में आ जाते हैं? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान वसुदेव के जो पुत्र है भगवान कृष्ण है, वो सब कुछ है, ऐसे उनको पर समझ में आ जाता। विशेष करके यहाँ पर वासुदेव मतलब उनको जो सर्व अंतर्यामी है, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं। श्वेतश्वर उपनिषद में ये व्याख्या सुंदर व्याख्या मिलते हैं ऐसे बोलते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो व्रत्वा अत्यातिष्ठ दशांगुलम पुरुषाये वेदं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यं अतामृतत्वासेना शेषानो यद्देनातिरोहिति। तो ये अंतर्यामी को वर्णन किया, सहस्र शीर्षो पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, उनके हजारों हजारों सर है, ऐसा पुरुष है वो, और हजारों हजारों अक्ष है। तो ऐसे इसका अर्थ क्या हो जाता है, सब जगह वो फैले हुए। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, हमारे सर जो है वो भगवान के हैं, वास्तविक वो ये इसका स्वामी है, हमारे शरीर का वो स्वामी है, हमारे नेत्रों का वो स्वामी है। हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा लकवा हो जाता है तो क्या हो जाता है, हालांकि हमारा इच्छा रहता है, हाथ पैर हिलाने के लिए या देखने के लिए बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते या हाथ हिला नहीं पाते, क्योंकि ये सबका स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण, वो सब जगह विद्यमान है, सब कुछ वो आवृत है। तो यही ये दूसरा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद का भी यहाँ पर श्लोक को लेकर है, न वै वाचो न चक्षुम शिम न श्रोत्राणि न मनसित्य आचक्षते प्राणः इति एवा चक्षते प्राणो ह्यवैतानि सर्वाणि भवन्ति। तो वास्तव में क्या बोल रहे हैं, चक्षु नहीं है, श्रोत्र नहीं है, मन नहीं है, ये सब इंद्रियां नहीं है, क्यों? जब तक प्राण नहीं रहता है तो ये सब चीज होते हुए भी वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। प्राण क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वैसे ही भगवान कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम बताए ना, भगवान कृष्ण इच्छा नहीं करेंगे तो हमारे ये सब चीज चलते नहीं है, क्या फायदा है नेत्र का, कान का या हाथ पैर का, हमें लकवा हो गया तो कुछ नहीं होगा फायदा, सिर्फ एक बार बन जाता। भगवान इच्छा करेंगे तो वो भी चलेंगे, है ना? तो ऐसे इसका अर्थ क्या है कि भगवान वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी सारांश है ऐसे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों का करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान के प्राप्त करता कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयास करता है तब निर्विशेषवादी की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हुए और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त तो हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं को विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। तो ये वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान कृष्ण के संबंध में जो जानता है वैसे व्यक्ति। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण के संबंध समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होता है। इसको वासुदेव परायणा या नारायण परायणा मत परा ये सब बताया जाता है। तो ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। तो वो बहुत ही दुर्लभ, स महात्मा सुवर लभा ऐसे कहते हैं। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रदान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है, वही माया है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वसुदेव है। अतः भगवत पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ ये कौन सा श्लोक है? भगवद गीता का 7 क्या और 11:40 में वहाँ पर भी अर्जुन कहते हैं कि ये भगवान वासुदेव सर्व जगह विद्यमान है। और बहुत जगह वर्णन आता है भगवद्गीता, सर्वत पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतुति लोके सर्व आवृत्त तिष्ठति। वो श्लोक है ना, पता है कितने, कौन सा श्लोक नंबर? 13:14। सब जगह उनका सर है, मुंह है, मुख है, सब कुछ है। तो वासुदेव शब्द का एक अर्थ होता है अंतर्यामी। वो कौन है अंतर्यामी? भगवान कृष्ण है, वही परमात्मा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बिरला है। स महात्मा सुदुर्लभा, इससे वो संबंधित है। वो श्लोक मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मां व्यति तत्वतः। वो 6 प्रकार के लोगों को हम लोगों ने चर्चा किया ना, उनमें से भक्त कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन ऐसे भक्त भी जो तत्वता जानते हैं, ज्ञान में आकर भगवान को शरण में जाते, बहुत ही दुर्लभ, इनको महात्मा कहते हैं। ऐसे ज्ञान से युक्त होकर भगवान को शरण में आते हैं, वो महात्मा है ना। सब सब महात्मा सुगुरु। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? ऑलरेडी वो ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त करे किया होता है, लेकिन जिज्ञासु जरूरी नहीं है ब्रह्मभूत, उनको भौतिक इच्छाएं हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे जिज्ञासा किसके लिए है, किसके कारण है वो जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न है। या कुछ भी हो, विशेष करके मनुष्य समाज में 3 प्रश्न महत्वपूर्ण है कि परम सत्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन को कैसे, लक्ष्य को क्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो जिज्ञासु है जरूरी नहीं कि इसके बारे में वो पूछे। तो विशेष करके ब्रह्म जिज्ञास मतलब वेदों में जिज्ञासा करना, एक अर्थ ब्रह्म जिज्ञासा का एक अर्थ वो क्या होता है, वेदों ब्रह्म, वेदों को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्माक्षर समुद्भव, वेदों में जिज्ञासा करना। तो क्या जिज्ञासा, वेदों में तो बहुत ज्यादा बहुत सारा चीज विषय है ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, आप किसी का भी जिज्ञासा कर सकते, इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्ञानी जो है उनको अभी ब्रह्मभूत अवस्था में रहते हैं, वो ज्ञान में स्थित रहते हैं, भौतिक इच्छाओं का उनको कुछ नहीं है, है ना, चार कुमार से उदाहरण है। इसलिए रूप गोस्वामी एक एलिजिबिलिटी कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचित नहीं कांक्षति। और ऐसे ब्रह्मभूत अवस्था में जो भक्ति में प्रवेश करते वो लोग क्या है, तुरंत ही भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते, प्रेम भक्ति को। जैसे चार कुमार थे, सुखदेव गोस्वामी थे, वो लोग, हम लोग अभी बहुत सारा हम लोगों ने जपा किया बहुत सारा, एक बार वो तुलसी के दल का जो वायु है उनके नासिका में चला गया और तुरंत ही शुद्ध भक्त बन गए वो लोग। हम लोगों का कितने सालों से जा रहा है अंदर नासिका में, कुछ भी नहीं हो रहा है ना लेकिन हो जाएगा और करते रहना चाहिए, है ना, सभी को एक समान फल नहीं मिलेगा, है ना, थोड़ा और करना चाहिए, ज्यादा हो गया हो जाएगा ऐसे, ठीक है।
तो ज्ञानी
हाँ कृष्ण भगवान करके पता होता है, चार कुमार को कृष्ण भगवान को पता होता, लेकिन उनको सेवा भावना नहीं रहता। वो भक्ति मतलब क्या है, वो सेवा भावना होना चाहिए, वो अभी भी निराकार ब्रह्म से आसक्त रहते हैं। वो जिज्ञासु है, जिज्ञासु है, ब्रह्म जिज्ञासा कर रहा है। ज्ञानी मतलब उनको ज्ञान होना चाहिए। ये चार कुमार को और यू नो सुखदेव गोस्वामी वो ब्रह्मवादी थे, वो दूसरा ये ज्ञानी के लिए दूसरा दूसरा शब्द क्या है, नाम क्या है, ब्रह्मवादी, वो लोग ब्रह्मवादी थे। उनको पता रहता है कि भगवान का दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप रहता है, स्वरूप है, लेकिन उनको अभी सेवा भावना जितना जागृत, वो ज्यादा से ज्यादा शांत भक्त हो सकते हैं, शांत भक्त है ना, शांत रस में भक्त हो सकते, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो वो लोग अन्य भक्त भी हो सकते हैं, प्रेम भक्त भी। हाँ पहले बताया गया है कि इसका अर्थ है कि ये ज्ञानी कब बना है, बहुत जन्मों के बाद ज्ञान अर्जित करके ज्ञानी बन गया, फिर वो शरण में आ जाता, तो वैसे ये है ये श्लोक, ठीक है। प्रभु जी के दार्शनिक प्रश्न आएंगे अभी हमें और हाँ हाँ कृष्ण सह बलराम है ना, बलराम जी के साथ आकर वो क्या क्या लीलाएं की है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। कितने हो गए, हो गए ना छह प्रश्न। वर्णाश्रम के पांच वर्ग,
ब्राह्मण कैसे दुर्बल,
दैहिक दृष्टिकोण से दुर्बल होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो होते हैं, लेकिन वो उनका एक लक्षण होता है अहिंसा, वो लोग उसको हिंसा नहीं करते, इसलिए विश्वामित्र उनके पास तो शक्ति था, योग शक्ति था, वो सभी ताटका मारीचा सबको जला सकते थे वो, लेकिन वो उपयोग नहीं करते उसको, वो क्षत्रिय का कार्य है, इसलिए उनको बुलाया राम और लक्ष्मण को।
सुनते
या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दैहिक दृष्टिकोण से वो दुर्बल रहते हैं। और दूसरे चीज क्या है, वो उनको रक्षा करना मतलब उनको पालन पोषण करना, उनके जो भी जरूरत है, क्योंकि वो ज्ञान अर्जन करने के लिए और ज्ञान को प्रचार करने के लिए वो अपने जीवन को समर्पित किया, उसको यू नो उसको अपना धन या जो भी जरूरत है उसको उगाने के लिए उनको समय नहीं रहता है, इसलिए उनको पालन पोषण करना चाहिए, वो अर्थ होता है। रक्षा करना मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा से रक्षा करना, समझा? इन सभी लोगों को, बूढ़ों को भी पालन करना चाहिए समाज, है ना, उनको थोड़ा जो भी जरूरत है वो सब, है ना, ठीक है।
भगवान ने पहले ही बता दिया चार प्रकार के लोग में शरण में आते, एक बार इधर शरण नंबर के आप करें तो बता दे, कोई आकर शुद्ध भक्त बन जाते, ये पहले बोल दिया फिर क्यों?
लेकिन वहां पर बताया भक्त के संपर्क में आने के बाद, ऐसे हम उदाहरण दिया ना मृगारी वगैरह, या वो नहीं संपर्क में आते हैं लेकिन भक्त लोग उनको संपर्क देते हैं उनको, है ना, उसके कारण वो भी वो भक्त बन सकते हैं, ठीक है। मायावादी और निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी में अंतर है। निर्विशेषवादी मतलब वो इम्पर्सनलेस, वो निराकार ब्रह्म से आसक्त रहता है, उन्हीं को ब्रह्मवादी कहते हैं। लेकिन क्या अंतर है मायावादी, मायावादी भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, वो भगवान माया है, भक्त माया है, भक्ति माया है, ऐसे कहते रहते। वो लोग भी एक तरह के निर्विशेषवादी है, लेकिन अंतर है ब्रह्मवादियों में और उनमें, ठीक है। चतुष कुमार मायावादी नहीं थे, वो निर्विशेषवादी थे, या एक ब्रह्मवादी थे, वो ब्रह्म के प्रति ज्यादा, उनको सेवा भावना अभी तक बढ़ा नहीं था, ठीक है। क्या है वो उग्रशव, हाँ है ना, ऐसा कुछ भागवत में है, आता है, एक नाम है उनका, एक और नाम है रोमहर्षणा, वो उनके पिता थे। सूत मतलब क्या है, वो एक पदवी है के समान है, उनका अलग अलग नाम हो सकते हैं शायद, हो मुझे याद नहीं आ रही, हाँ भागवत में है। उग्रश्रव सूत प्रभुपाद जी ने कम से कम कुछ स्टैंडर्ड दिया है, वो लोग 50 क्या है 50 माला जप करना चाहिए, वो कम से कम वो गर्भधारण संस्कार होगा, लेकिन अन्य संस्कार भी पालन करना चाहिए भक्तों को, क्योंकि ये भगवान का व्यवस्था है, उसको स्वीकार करेंगे, भक्त लोग असुर तो नहीं है ना, शास्त्र विधि को पालन करेंगे, जब भक्ति में जो अनुकूल कारक नहीं है वो उसको हम लोग त्याग सकते हैं। तो अभी कमंडलों दंड पकड़ के चलने का जरूरत नहीं है, है ना, अभी आपको ये ऐसे मुसलमान देश में प्रचार करने के लिए कमंडलो दंड पहन के चले गए जाएंगे तो होता नहीं, जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अंधाधुंध शास्त्र विधि को हमें नकार नहीं सकते उसको, वो असुर असुरी भाव, यह शास्त्र विधि मुस्तृत वर्तते काम अकारत न स सिद्धि मवापनोती न सुखम न परामते। तो बहुत इसके बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है, गर्भदान संस्कार, गर्भदान संस्कार, गर्भदान संस्कार, इसके संस्कारों के बारे में बहुत लिखा है उन्होंने अपने तात्पर्य, वो होना चाहिए, ये सब शिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए लोगों को, नहीं तो नराधम हो जाएंगे वो लोग, भक्ति कर सकते लेकिन उनको कठिन होगा भक्ति करना, वरना भगवान को शरण में जाना बहुत मुश्किल होगा, हम लोग पुश करते हैं ना इतना जोर से पुश करने के बाद भी होता नहीं कुछ, क्योंकि ये नराधम है वो लोग, होता है ना ऐसे प्रचार में, ऐसे होता है ना, घर छोड़िए अभी हो गया वानप्रस्थ लीजिए, ऐसे नहीं छोड़ते है, फिर भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। बोला कि वो कुछ ऐसे भक्त है वो, ठीक है। हरे कृष्णा।